अध्याय 8 किले में जाने का रास्ता भाग 2। तीनों पुस्तकालय में पहुंच गए। पुस्तकालय में पहुंचते ही आर्य और आयुध एक जगह पर रुक गए और हिना आगे बढ़कर किताबों को देखने लगी। पुस्तकालय में सभी किताबों को श्रेणीबद्ध रखा गया था। एक समान अक्षरों से शुरू होने वाली किताबें एक साथ थीं, जैसे जिन किताबों के शीर्षक अ से शुरू होते थे उन्हें एक अलमारी में रखा गया था और जिन किताबों के शीर्षक आ से थे उन्हें एक अलमारी में रखा गया था। हिना तुरंत की वाली अलमारी की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने किताबों के शीर्षक पढ़े और उसमें किले का रहस्य वाली किताब ढूंढी। जल्द ही उसे किले का रहस्य वाली किताब मिल गई थी। उसने किताब उठाई और तुरंत आर्य और आयुध के पास आ गई। उनके पास वो आकर बोली, अच्छा हुआ मैंने सुबह पुस्तकालय में किताबों के क्रम पर ध्यान दिया था, इस वजह से मुझे किताब जल्दी मिल गई। चलो अभी इसे जल्दी से जल्दी पढ़ें। वहां पुस्तकालय में पढ़ने के लिए लकड़ी के मेज और कुर्सियां मौजूद थे। तीनों ही वहां एक जोड़ी कुर्सी और मेज के पास गए और वहां किताब को मेज पर रख दिया। आर्य और आयुध वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि हिना ने खड़े रहकर ही किताब को खोलो। हिना ने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया, लेकिन यहां एक अलग ही चमत्कार देखने को मिला। किताब एक साउंड स्टोरी थी, अर्थात बोलने वाली किताब। पन्ने को खोलते ही कुछ अलग तरह की हरकतें हुई, जैसी मशीन में होती हैं, और लाल रोशनी के साथ एक आवाज बाहर आने लगी। इस किले को सन 1122 में आश्रम के मुखिया इसी नाम ने बनाया था। किले के अंदर जाने के 4 चरण हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य किले की सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में इस किले का उपयोग आश्रम के लोगों को बचाने के लिए किया जा सके। पर बीते वक्त में इस किले के अंदर खतरनाक दुश्मनों को कैद करके रखा जाने लगा। पहले चरण में किले का दरवाजा आता है, जिसे एक खास तरह की ही रोशनी से ही खोला जा सकता है, और वो भी तब जब वो रोशनी किले के दरवाजे पर बनी एक खास जगह पर पड़े। जब तक ये दोनों मेल सही नहीं होंगे, तब तक किले का दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे चरण में किले की वो जगह आती है जहां पर जमीन नहीं है, अर्थात बिना फर्श का कमरा। ये जगह किले के 2 रास्तों को आपस में जोड़ती है। अगर किले में आगे बढ़ना है तो इस जगह को पार करना पड़ेगा। इस जगह को पार करने के लिए उड़ने की कला आनी आवश्यक है। इन दोनों चरणों को पार करने के बाद तीसरा चरण आता है, मौत का गलियारा। इस मौत के गलियारे में चप्पे चप्पे पर ऐसे जाल बिछाए गए हैं जो पलक चपकते ही यमराज के दर्शन करवा दे। इन सबसे बचने के बाद चौथा और आखिरी चरण आता है, नरक की खूंखार आत्माएं। ये खूंखार आत्माएं हर उस जिंदा शख्स को निगल जाती हैं जो उस किले की ओर आती है। इनके लिए न तो रोशनी का वफादार कुछ मायने रखते हैं, न ही अंधेरे के नुमाइंदे, और न ही इंसान। सब इनके लिए एक समान है। नरक की इन आत्माओं से सिर्फ वही शख्स बच सकता है जिसके पास वो रोशनी हो जिससे दरवाजा खोला जाता है। जब तक वो रोशनी शख्स के हाथ में है, तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वो रोशनी उसके हाथ में नहीं, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं। इन 4 चरणों के सुरक्षा चक्रों को पार करके ही किले के अंदर जाया जा सकता है। इसके बाद आवाज आना बंद हो गई और लाल रोशनी भी गायब हो गई। आयुध के मुंह से निकला, बाप रे, इतने सारे सुरक्षा चक्र कैसे तोड़े जाएंगे? वहीं आर्य ने कहा, और हम उस रोशनी का बंदोबस्त कैसे करेंगे जो दरवाजा खोलने के लिए चाहिए? हिना अभी भी कुछ सोच रही थी। सोचते हुए वो बोली, रोशनी का बंदोबस्त हो जाएगा। आचार्य वर्धन की छड़ पर लगी रोशनी ही वो रोशनी है जिसकी यहाँ बात हो रही है, सफेद रोशनी। इन दोनों छड़ियों को एक तरफ कर दिया जाए तो आचार्य वर्धन की छड़ भी कम नहीं। उनकी छड़ को आश्रम के पुराने आचार्यों ने बनाया था, तब जब उन्हें पता चला शैतानों की ओर से छड़ों का निर्माण किया जा रहा है। एक छड़ के मुकाबले के लिए उसके सामने छड़ का आना जरूरी है। पुराने आचार्य द्वारा बनाई गई छड़ में उसी रोशनी का इस्तेमाल किया गया है जिसका इस्तेमाल उन दोनों ही छड़ों में हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी छड़ी में सिर्फ सफेद रोशनी है। लाल रोशनी और काली रोशनी बुराई का प्रतीक है, तो उनका मिश्रण नहीं किया गया। मगर आचार्य वर्धन तो यहाँ आश्रम में ही नहीं है, आर्य उसके बात सुनने के बाद बोला, और अगर वो नहीं है तो उनकी छड़ कैसे होगी? नहीं आर्य, हिना ने तुरंत अपनी मोटी आंखें उसकी तरफ की। आचार्य वर्धन कभी भी आश्रम से बाहर अपनी छड़ को नहीं लेकर जाते। जाने से पहले वो उन्हें यहीं आश्रम में रख कर जाते हैं। क्या सच में? आयुध अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर हमें आचार्य वर्धन की छड़ मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा, हम किले में चले जाएंगे। हिना, क्या तुम जानती हो उनकी छड़ कहाँ है? मेरे ख्याल से उनके कमरे में ही होनी चाहिए, इसके अलावा वो उन्हें कहाँ रखेंगे? आयुध अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उसने हिना को कहा, हिना तुम आर्य के साथ जाओ और आचार्य वर्धन के कमरे से वो छड़ लेकर आओ, और तब तक मैं एक ऐसी चीज लेकर आता हूँ जो हमारे बहुत काम आने वाली है। हिना ने अपनी कमर पर हाथ रखे। अब तुम ऐसा क्या लाने वाले हो? आयुध कुर्सी को एक तरफ कर बाहर जाने लगा। बाहर जाते जाते उसने कहा, ये तुम लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, जल्द ही वापस किले के बाहर मिलते हैं, और वो निकल गया। वहीं हिना ने भी किताब को वापस अलमारी में रखा और आर्य के साथ आचार्य वर्धन के कमरे की ओर चल पड़ी। आर्य और हिना जिस कमरे के सामने थे वो कुटिया जैसा दिखाई दे रहा था। कुटिया भी बाहर से देखने पर एक झोपड़ी जैसी लग रही थी। उसके चारों ओर एक छोटी सी लकड़ी की बाड़ थी जो हिमालय के सर्द बर्फीले मौसम के कारण दब चुकी थी। कुटिया की दीवारें दोहरी थीं जो बाहर की ठंड से बचाव के लिए बनाई गई थी। पहली दीवार बांस की लकड़ियों से बनी हुई थी, जबकि दूसरी दीवार ईंटों की थी।
कुटिया की छत त्रिकोणी और पत्तों की बनी हुई थी, जिसके ऊपर कहीं कहीं बर्फ दिखाई दे रही थी। आर्य और हिना आसपास देखते हुए धीरे धीरे कुटिया के पास गए। कुटिया के बाहर ही दाईं ओर हिमालय में पाया जाने वाला एक अजीब किस्म का जानवर बंधा हुआ था, जो बकरी जैसा दिख रहा था पर बकरी नहीं थी। उसके बाल हरे रंग के थे और मुंह भी चौड़ा और उभरा हुआ था। आंखों को हरे रंग के बालों ने पूरी तरह से ढक रखा था। एक बार तो देखने पर ऐसा एहसास हो रहा था कि उसकी आंखें ही नहीं। ऐसा ही कुछ कुछ हाल उसके कानों का था, वो भी पूरी तरह उसके बालों से ढक रखे थे। हिना जानवर को देखते हुए बोली, हमारे आचार्य वर्धन को भी पता नहीं कैसे कैसे जानवर पालने का शौक है। आर्य और हिना खुद को उस जानवर के ध्यान से बचाते हुए आचार्य वर्धन की कुटिया के अंदर चले गए। कुटिया के अंदर जाते ही उन्हें एक अलग ही गर्माहट का एहसास हुआ। बाहर जितनी ज्यादा ठंड थी, अंदर उतनी ही ज्यादा गर्मी। कुटिया की दोहरी दीवार इसे अंदर से ज्यादा गर्म बनाए रखने का कारण थी। दीवारों पर जगह जगह जलती हुई मशाले टंगी हुई थी, जो बाहर से आने वाले ठंडे तापमान को संतुलित कर रही थी। आर्य ने अपनी नजरें कुटिया के अंदर आसपास दौड़ाई। कुटिया में देखने को कुछ खास नहीं था। एक और छोटा सा पलंग था, जिस पर बड़े बड़े कंबल बिछे हुए थे। पास ही एक छोटा सा मटका पड़ा था, जिसके नीचे बुझे हुए कोयले थे, जो शायद मटके के पानी को गर्म रखने के लिए रखे गए थे। इसी पलंग से थोड़ी दूर दीवार पर एक ओम नाम निशान बना हुआ था, जिसके पास कुछ अगरबत्तियां चल रही थी। इसी कुटिया के अंदर दूसरी ओर दो छोटे बैठने के लिए बने मोड़े थे। मोड़े बैठने के लिए डमरू जैसे आकार की बनी कुर्सी होती है, जो सरकनों के डंडों से बनाई जाती है। सरकनों के ये डंडे रेगिस्तान एरिया में पाए जाते हैं। मोड़े चाय पीने के लिए बना मिट्टी का बर्तन।
हिना भी अपनी आंखों से पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। हिना ने कमरे को मोटी मोटी आंखों से देखते हुए कहा, आचार्य वर्धन के छड़को तो यहीं कमरे में होना चाहिए, मगर वो मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रही। आर्य ने अंदाजा लगाते हुए कहा, तुमने कहा था ना वो ताकतवर है, ऐसे में हो सकता है उन्होंने छड़को कहीं और रखा हो, किसी सुरक्षित जगह पर। आचार्य वर्धन ऐसा नहीं करते, हिना ने जवाब दिया। मतलब वो बाहर की सुरक्षित जगहों पर विश्वास नहीं करते। अगर उन्होंने उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा होगा तो वो यहीं कहीं होगी, इसी आश्रम में कहीं, और उनकी इसी कुटिया में। कुटिया के अंदर दरवाजे के सामने की दीवार पर एक बड़ा सा मिट्टी का गुंबद जैसा आकार रखने वाला पिरामिड बना हुआ था। अचानक आर्य का ध्यान उस तरफ गया। शायद मुझे आचार्य वर्धन की खुफिया जगह मिल गई, आर्य ने खुद से कहा, और वो उस गुंबद की ओर बढ़ने लगा। उसकी गुंबद की ओर जाने के कारण हिना का ध्यान भी उस तरफ चला गया था। गुंबद के आसपास एक सोने की चेन बंधी हुई थी, जिसका एक सिरा पलंग की ओर जा रहा था। गुंबद के ऊपर एक बटन के आकार जैसा यंत्र था, जहां चेन का दूसरा सिरा लगा हुआ था। आर्य ने बिना ज्यादा सोचे विचारे उस चेन को खींच दिया, जिससे गुंबद के ऊपर लगा बटन दब गया। आसपास कोई हलचल नहीं हुई, और ना ही कोई ऐसी घटना जिसका संबंध उस छड़ से हो। हिना कमरे में चारों तरफ देख रही थी। आर्य ने भी इधर उधर देखा, ये देखने के लिए कि आखिर इस बटन का संबंध किससे है, पर सब चीजें सामान्य थी। अचानक चरमराहट की एक आवाज के साथ सामने वाली दीवार में हलचल होने लगी, और दीवार का कुछ हिस्सा अलग होकर एक दरवाजे में बदल गया। आर्य और हिना तेजी से पीछे हो गए। दोनों ही अपने सामने के उस दरवाजे को देख रहे थे। दरवाजा बहुत छोटा था, पर वो धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहा था। आर्य ने उस दरवाजे को गौर से देखा। आचार्य वर्धन के दिमाग को मानना पड़ेगा, हिना दरवाजे की तरफ गौर से देखते हुए बोली, यकीनन तभी तो उनके दम पर पूरा आश्रम चल रहा है। आर्य ने वहां कमरे से एक मशाल उठा ली। इसके बाद वो हिना को बोला, चलो अंदर चलें। दरवाजे के अंदर दोनों ही एक ढलान वाले रास्ते पर नीचे उतरे, जहां उन्हें सिवाय हल्की रोशनी के और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आसपास देखने से पता चल रहा था कि वो एक अंधेरे गलियारे में है, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी। ये एक लंबा और संकरा गलियारा था, जो अक्सर पुराने जमाने की गुफाओं में पाया जाता है। शुरुआत में गलियारे की चौड़ाई ज्यादा थी, पर आर्य और हिना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे गलियारे की चौड़ाई लगातार कम हो रही थी। कुछ देर और चलने के बाद गलियारा काफी संकरा और पतला हो गया। गलियारा इतना पतला था कि आर्य और हिना साथ साथ में एक दूसरे से टकराने लगे थे, और आगे चलने पर उन्हें एक दूसरे के आगे पीछे होना पड़ा। अब आगे के रास्ते में मात्र एक आदमी के चलने जितनी जगह थी। दोनों ही आसपास की पथरीली गलियारे की दीवारों से टकराते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। आर्य के हाथों में जल रही एक छोटी सी मशाल लगातार उसे आगे का रास्ता दिखा रही थी। आर्य के चेहरे पर शक और शिकन की लहरें साफ देखी जा सकती थीं, और ये बात भी भली भांति पता लग रही थी कि उसके मन में यही विचार चल रहा है कि ये गलियारा कहाँ खत्म होगा। लगभग 4 से 5 मिनट चलने के बाद गलियारा फिर से चौड़ा होने लगा, और उसमें उपलब्ध रोशनी की मात्रा में भी बढ़ने लगी। पहले जहाँ गलियारे में हल्की रोशनी थी, वहीं अब गलियारों में पर्याप्त रोशनी नजर आ रही थी। रोशनी का स्रोत गलियारे की दीवारों पर लगे जादुई लैंप थे। इस तरह के कुछ लैंप आश्रम में अन्य जगहों के सामने भी लगे हुए थे। गलियारे में आगे का सफर खत्म हुआ। अंत में आर्य और हिना एक कमरे में पहुंच गए, जो गलियारे की तरह ही पथरीला था। ये वही खुफिया जगह थी जहां आचार्य वर्धन अपनी छड़ रखते थे। कमरा किसी गुफा के आखिरी छोर जैसा प्रतीत हो रहा था। जगह जगह कटे हुए पत्थर और उन पर टंगे रोशनी के लैंप थे।
गुफा जैसे दिखने वाले कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा ताबूत जैसा बक्सा रखा गया था। बक्से के आसपास वैसी ही चेन बंधी हुई थी जैसी चेन उस गुबंद के ऊपर थी। हिना बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आचार्य ने इस जगह को कैसे बनाया होगा। जरूर उन्होंने जादुई मंत्रों का इस्तेमाल कर इस जगह का निर्माण किया होगा। ये सुनकर आर्य ने कहा, जरूरी नहीं, हो सकता है ये जगह पहले से ही यहाँ मौजूद हो। फिर यहाँ के जो गलियारे हैं उनकी दरारें देखकर यही लगता है कि इसका निर्माण प्राकृतिक तौर पर हुआ है। कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें शायद अब वो काम करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, हिना ने कहकर ध्यान बदल दिया। दोनों ही वापस बक्से की तरफ देखने लगे। बक्सा काफी पुराना था। बक्से के ऊपर कुछ पुरानी कलाकृतियां बनी हुई थी जो किसी खास तरह के निशान थे। आर्य ने इस बक्से के ऊपर बंधी चेन को जोड़ रही थी। देखने से साफ पता लग रहा था कि ये चेन इसे खोलने की चाबी है। आर्य ने बिना देरी किए आगे बढ़कर चेन को खींच दिया। बक्से में एक टक की आवाज हुई और वो एक यांत्रिक मशीन की तरह खुद में बदलाव करने लगा। उसके चारों कोनों से एक उभरता हुआ आकार बाहर निकला। बीच की आकृतियां घूमते हुए अंदर धंसने लगी। कोनों पर बने अजीब से निशान भी बाहर की ओर निकलने लगे। ये प्रक्रिया कुछ देर तक चलती रही और अंत में उस पूरे बक्से के अंदर से पत्थर की बनी एक परपट्टी बाहर आ गई जिसके ऊपर छड़ रखी हुई थी। हिना और आर्या दोनों के चेहरे पर उस छड़ को देखकर खुशी आ गई। परपट्टी अजीब तरह की थी। उसके एक सिरे पर गहरा धंसा हुआ गड्ढा था जहाँ छड़ का चमकता हुआ हिस्सा था और बाकी के हिस्सों में छोटी नाली जैसी जगह थी जहाँ उसका लकड़ी वाला सिरा था। आर्या आगे था तो उसने छड़ी उठा ली। इसके बाद उसने खुशी से हिना को देखा और उसे भी छड़ी दिखाई। छड़ी मिलने के बाद दोनों ही वापस बाहर की तरफ चल दिए। उन्हें अब किले के पास जाना था।